मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं खासकर जो कैबिनेट के कर निर्णय रहे हैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले जो कल हम जिस विषय पर बात कर रहे थे, संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर जो विवाद की स्थितियां आई या उनसे जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए पॉइंट्स निकल करके आते हैं उसे पूरा कर लेते हैं। विपक्ष ने क्यों बहिष्कार किया वे बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कहां तक सही है। देखिए, प्रधानमंत्री देश के, आप यूं कह लीजिए कि अगर कार्यकारी प्रमुख के रूप में कहें तो प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक नहीं है, कार्यकारी के रूप में प्रथम व्यक्ति हैं। सरकार वो बनाते हैं, कैबिनेट के वो अध्यक्ष होते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय वो लेते हैं और आप देखिए कि सरकार प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाती है। तो अगर हम शक्ति के बारे में बात करें या यूं कह लीजिए कि देश पर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है या यूं कह लीजिए कि देश को आगे कौन ले जा सकता है, देश को कौन स्वरूप देता है, तो प्रधानमंत्री है और उनकी टीम है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हम कह सकते हैं कि किसका उद्घाटन कौन करेगा यह निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री का है। वहां कोई वो असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में कहीं यह नहीं लिखा गया है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति ही करेंगे। वो तो हम एक स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं, तो उस रूप में उन्हें भी आप गलत नहीं ठहरा सकते। क्योंकि देखिए, अगर प्रधानमंत्री न हो, कल्पना करके देखिए, तो संसद भी नहीं है, क्योंकि संसद तो तभी है ना जब किसी की सरकार है और सरकार प्रधानमंत्री की होती है। तो इस स्थिति में आप इनके पक्ष में भी बात कह सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तत्व को लेकर चलते हैं। इसको लेकर के फिर जो एडिटोरियल कमेंट्स आए उनमें यह सलाह दी गई कि ज्यादा अच्छा होगा कि ऐसी स्थितियों के लिए एक्ट बना लिया जाए, कुछ कानून बना लिए जाएं कि भाई इन इन स्थितियों में जो उद्घाटन का काम होगा वो राष्ट्रपति करेंगे, बाकी के लिए प्रधानमंत्री करेंगे या उपराष्ट्रपति करेंगे, या जो भी है एक प्रोटोकॉल टाइप का अगर बना लिया जाए तो भविष्य में हम इस तरह के विवादों से बच सकेंगे। यह एक प्रकार से निष्कर्ष हो गया। न्यायालय ने बिल्कुल सही किया, जब वहां याचिका दायर की गई तो न्यायालय ने उस याचिका को रद्द कर दिया। यहां पर आप कह सकते हैं कि न्यायालय का जो निर्णय था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर विधायिका की छोटी छोटी चीजों में, अगर कार्यपालिका की छोटी छोटी चीजों में, इस तरह की चीजों में भी न्यायपालिका दखल देने लगे तो फिर कार्यपालिका और विधायिका का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए रुकावट की स्थिति पैदा हो जाएगी, तनाव की और संघर्ष की स्थिति आ जाएगी, उद्देश्य के लिए बेहतर नहीं होगा। तो न्यायालय ने भी यहां अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। दोस्तों, इस बीच में सेंगोल शब्द बहुत चर्चा में आया है, और जब कोई भी शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए उसका महत्व नहीं के बराबर हो जाता है। तो सेंगोल का महत्व तो नहीं के बराबर हो गया है। आप जानते हैं सेंगोल का मतलब होता है शंकु, या शंख का जो आकार है वो शंकु आकार होता है। ये चोल राजा जो हुआ करते थे वे अपने उत्तराधिकारी को एक शंकु के रूप में राजदंड सौंपते थे। इसका मतलब है कि अब सत्ता तुम्हारे हाथ में है, तो यह एक प्रकार से सत्ता का प्रतीक है। हमारे यहां जब देश आजाद हुआ तो कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ये हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू जी उनको सौंपा था, लेकिन इसके बाद से फिर इसे जो सेंगोल है वो इलाहाबाद में रख दिया गया था और अब इसे निकाल करके बकायदे संसद में लाया गया है, जो स्पीकर के पीछे रखा गया है। तो ये जो शंकु है या कह लीजिए जो सेंगोल है बेसिकली सत्ता का प्रतीक है, मतलब सॉवरेंटी का प्रतीक है, सर्वप्रभुत्व संपन्नता का प्रतीक है आप कह सकते हैं, निष्पक्ष न्याय का भी प्रतीक है ये एक प्रकार से राजदंड। तो बस थोड़ी सी बातें ही इसके लिए मेरी समझ से पर्याप्त होंगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, आर्थिक असमानता हो तो विकास का पैमाना बदले, ये दैनिक भास्कर में छपा है। इसमें बहुत अच्छे डेटा दिए हुए हैं, बाद में कहीं ऐसा ना हो कि मैं स्लिप कर जाऊं, तो इसीलिए अभी से मैं ये बता दे रहा हूं कि इस एडिटोरियल कमेंट को आप ध्यान से पढ़ें और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा दिए हुए, जो लेटेस्ट डेटा है, आप उन्हें नोट भी कर लें। प्री एग्जामिनेशन के लिए तो नहीं, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, तो प्लीज डू दिस। अब मैं आता हूं उनके बारे में जो कैबिनेट ने कल निर्णय लिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय हैं। आपको मालूम होगा कि हर बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है, और कैबिनेट फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। कुछ निर्णय तो वो सीधे सीधे लागू कर सकती है, कुछ वो खासकर विधेयक के लिए निर्णय लेती है कि इस तरह का कानून लाया जाए, बनाया जाए, तो उसके बारे में निर्णय पहले कैबिनेट ही लेती है, फिर उसे संसद के सामने पेश किया जाता है। अभी जो निर्णय लिए गए हैं, चूंकि ये बहुत ही सामान्य किस्म के ही निर्णय है कह लीजिए, तो कैबिनेट का अधिकार होता है कि वो निर्णय ले और इन्हें लागू कर दे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है भारत के संदर्भ में, वह है अनाज भंडारण योजना के बारे में। शब्द पर जाइए, अनाज भंडारण योजना, यानी कि जो हमारे यहां अनाज उत्पन्न होगा उसको हम स्टोर कैसे करें। आपको मालूम है कि हमारे यहां स्टोर की बहुत बुरी समस्या है। जैसे हमारे यहां अभी जो अनाज का उत्पादन है लगभग 3,100 लाख टन है, 3100 लाख टन है, जबकि हमारी जो भंडारण क्षमता है वो लगभग 50% के आसपास है। तो 50% का क्या हो रहा है? तो आप अक्सर सुनते होंगे कि अनाज सड़ रहा है, कुछ चूहे खा जा रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में बर्बाद हो रहा है, इस तरह की समस्याएं सुनने में आती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, जबकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन डेवलप्ड नेशन में उनके यहां जितना अनाज उत्पादन होता है उससे ज्यादा भंडारण की क्षमता होती है। और हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, खाद्यान्न सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमारे लिए भंडारण क्षमता बहुत जरूरी है। कृषि प्रधान देश है, अभी भी 55% से अधिक लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना ही चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए यह अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना है। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना। यह माना जा रहा है कि 5 सालों में अगर इसे पूरी तरह से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो हमारी जो क्षमता है वो 2150 लाख टन हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो हमारी जरूरतें हैं, देखिए, उससे हम काफी कम रहेंगे, लेकिन चलिए अभी जो 1450 है वो कम से कम 2150 तो होगी, यानी कि 700 लाख टन भंडारण क्षमता हम 5 वर्षों में बढ़ा लेंगे। और इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ये जो काम होगा ये सहकारिता क्षेत्र में होगा, कोऑपरेटिव तरीके से होगा। इसके लिए बकायदे नेशनल लेवल पर कमेटी बनाई जाएगी, नेशनल लेवल पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर मंत्रालय कमेटी होगी, यानी कि इस काम से जुड़े हुए जो मंत्रालय होते हैं, जैसे कृषि मंत्रालय हो गया, सहकारिता मंत्रालय हो गया, उपभोक्ता मंत्रालय हो गया, ये आपस में मिलकर के निर्णय लेंगे। राज्य स्तर पर एक कमेटी होगी जिसके जो हेड होंगे वो चीफ सेक्रेटरी होंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक कमेटी होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी होगी उसका हेड कौन होगा, तो आपको सोच लेना चाहिए कि उसका हेड कलेक्टर होगा। यस, तो इस तरह से त्रिस्तरीय कमेटियां होंगी जो इसे लागू करेंगी। दोस्तों, मेरी समझ से इतनी जानकारी इस टॉपिक पर पर्याप्त होगी। इसके बाद एक दूसरी योजना शुरू की गई है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग। इसके बारे में अखबारों में नहीं आया है, लेकिन रेडियो न्यूज में यह खबर थी। चूंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सेवा है, भारत में इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए ये न्यूज जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि और खासकर तब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिस तरीके से सिविल सर्विस में अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग, मतलब जो सर्विसेज का जो काम होगा उसे हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। प्रायोगिक तौर पर इसे अभी शुरू किया गया है, अभी प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। आइए थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेते हैं आपका। नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत सेवा आउटसोर्सिंग, ठीक है, और मैंने कहा कि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। तो ये कहां शुरू किया गया होगा? मैं 4 स्थानों के आपको नाम दे रहा हूं, सोचिए कि इनमें से किस स्थान पर शुरू किए जाने की संभावना है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो बस अंदाज लगाइएगा, क्योंकि ये कैपेसिटी पैदा करना अब आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो, और अगर नहीं बनना चाहते हैं तो फिर ठीक है, जो आप तैयारी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उस तरह से आप करते ही रहेंगे। एक स्थान है गोवा, दूसरा स्थान है बेंगलुरु, तीसरा स्थान है भोपाल और चौथा स्थान है चेन्नई। ये मैंने 4 स्थान दिए हैं। अब कौन कौन से स्थान दिए इनफैक्ट मुझे भी अब पता नहीं है, लेकिन इन 4 स्थानों में एक स्थान तो सही है। अब आप सोचिए कि वो स्थान कौन सा होगा जहां ये परियोजना शुरू की गई होगी, और आप अंदाज लगा लेंगे, घबराइए मत। थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, हड़बड़ाइए भी मत, सोचिए, सोच लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सोच लेंगे, और जब सोच लेंगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, आपके अंदर एक अलग तरीके की दृष्टि पैदा होगी, वह दृष्टि पैदा होगी जो यूपीएससी को चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये माना जा रहा है कि इस आउटसोर्सिंग से बकायदे भारत जो है इसका एक विश्व केंद्र बन सकेगा और हमारे यहाँ 5 सालों में लगभग 20 अरब डॉलर आएंगे। देखिए जब कहा जाता है अरब डॉलर या डॉलर तो अमेरिकी डॉलर ही होता है, डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो दूसरे देशों में भी चलती है, कैनेडियन डॉलर अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अलग होते हैं, इसलिए अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा अमेरिकी डॉलर। तो जब हम सामान्य तौर पर बोलते हैं तो उसका मतलब अमेरिकी डॉलर से ही होता है, 20 अरब अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू हमें मिल सकता है, फिर रोजगार तो मिलेगा ही। तो दोस्तों ये दूसरी योजना जो भारत ने शुरू की और जिसके बारे में कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण योजना जो शुरू की गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं केवल अभी आपको नाम भर बता रहा हूं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना है। वैसे मैं आपको नाम इसलिए बता दे रहा हूं ताकि अगर आपके लिए संभव हो तो आप बकायदे अखबारों में आज इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपकी तैयारी पहले से ही हो जाएगी, फिर जब मैं बताऊंगा तो उसे समझना आपके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। ये जो योजना है ये है CITIIS, जिसे आप कहेंगे सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, इसके बारे में निर्णय लिया गया है। चूंकि ये महत्वपूर्ण योजना है इसके थोड़े से डिफरेंट एंगल्स भी हैं और योजना एक है, इसका जुड़ाव कई दूसरे विषयों से भी है जिसे मैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहता हूं, इसके बारे में दोस्तों मैं अब आप लोगों से इत्मीनान के साथ कल बात करूंगा। तो आज बस इतना ही, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। आज फिर मैं नाम लेने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि बहुत सारे मेल आए हैं और उन मेल्स का जो चरित्र है वही जो अभी एग्जाम हुए हैं उनसे जो परेशानियां हो रही हैं, जो निराशा पैदा हो गई है, जो द्वंद्व दिमाग में चल रहा है, जो उथल पुथल मची हुई है, उन्हीं को सबने अपने अपने ढंग से व्यक्त किया है, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने मेल लिखा, अपने अनुभवों से मुझे अवगत कराया, इसके लिए मैं आपकी बिल्कुल भूरी प्रशंसा करता हूं क्योंकि इससे मुझे एक दृष्टि मिलती है, एक दिशा मिलती है कि अब मुझे अपना काम किस तरीके से करना है। तो ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।